जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधे जय राधे 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 श्री राधे हे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा बनमाली राधा बनमाली राधे दे जय राधा राधा रमन राधा राधा रमन राधे दे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल नदिया बिहारी बोल हरि बोल हरि बोल युग अवतारी बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जताय गौर प्रेम नंदे हरि हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशाद गौर भक्त वृंद की गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी देवी की राम भक्त हनुमान की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की नाम संकीर्तन यज्ञ की हरे कृष्ण महामंत्र की भगवद्वाणी भगवद्गीता की श्रीमद् भागवत महापुराण की समागत भक्त वृंदों की समागत भक्त वृंदों की समागत भक्त वृंदों की गुरु एंड गौरांग की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आइए हम भगवद गीता का पाठन करते हैं। स्कंद 8 अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 1-4। श्री बादरायणी रुवाच बृषध्वजो निशम्येदम् योषितरूपेण दानवान् मोहयत्वा सुरगणान् हरि सोममपाययत् ब्रसमारुह्य गिरिशः सर्वभूतगणैर्व्रतः सह देव्याय यौ द्रष्टुम् यत्रास्ते मधुसूदनः सभाजितो भगवता सादरं सो मया भव। सूपविष्ट उवाचेदम् प्रतपूज्य स्मयन् हरिम्। श्रीमहादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मया सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। श्रीमहादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मया सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। आप इसका पाठ कर सकते हैं।
श्रीमहादेव वाच
हरे कृष्ण। तो आज इस 12वें अध्याय का प्रारंभ है, इसलिए हम 12वें अध्याय की जो भूमिका है उसको भी पढ़ेंगे और उसके बाद में चार श्लोक हैं उन श्लोकों का अनुवाद पढ़ेंगे, तात्पर्य उनमें है नहीं, और इस चौथे श्लोक का फिर हम पाठ करेंगे और उसकी तात्पर्य व्याख्या पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है मोहिनी मूर्ति, भगवान मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिवजी का मोहित होना। मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिवजी का मोहित होना। इस अध्याय में वर्णन हुआ है कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सुंदर मोहिनी मूर्ति अवतार को देखकर शिवजी मोहित हो गए और बाद में किस तरह उन्हें होश आया। जब शिवजी ने आकर्षक स्त्री मोहिनी के रूप में भगवान श्री हरि की लीलाओं के विषय में सुना तो वे अपने बैल पर सवार होकर भगवान से मिलने चल पड़े। वे अपनी पत्नी उमा तथा अपने सेवक भूतगणों के साथ भगवान के चरण कमलों के पास जा पहुंचे। शिवजी ने सर्वव्यापी विराट रूप, सृष्टि के परम नियंता परमात्मा, सबके आश्रय तथा पूर्ण स्वतंत्र सभी कारणों के कारण श्री भगवान को नमस्कार किया। इस प्रकार उन्होंने श्री भगवान का सही सही वर्णन करते हुए उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा अभिव्यक्त की। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों पर बड़े दयालु होते हैं, अतएव अपने भक्त शिवजी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया और अपने आप को एक अत्यंत सुंदर एवं मोहक स्त्री के रूप में प्रकट किया। इस रूप को देख करके शिवजी फिर मोहित हो गए। बाद में भगवत कृपा से वे अपने आप को नियंत्रित कर सके। इससे यह प्रदर्शित होता है कि इस भौतिक जगत में भगवान की माया शक्ति से हर व्यक्ति स्त्री के रूप पर मोहित होता है, किंतु पुनः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से वह माया के प्रभाव को जीत सकता है। यह श्री भगवान के सर्वोच्च भक्त शिवजी से प्रकट हो गया। पहले तो वे मोहित हो गए, किंतु बाद में भगवत कृपा से उन्होंने अपने आप को रोका। इस संबंध में यह घोषित किया जाता है कि केवल शुद्ध भक्त ही अपने आप को माया के आकर्षक रूप से दूर कर सकते हैं, रख सकते हैं। अन्यथा एक बार जीव माया के वाय स्वरूप के द्वारा बंदी हुआ नहीं कि वह उससे कभी छूट नहीं पाता। जब श्री भगवान ने शिवजी पर कृपा की तो उन्होंने अपनी पत्नी भवानी तथा अपने साथी प्रेतों के सहित श्री भगवान की प्रदक्षिणा की और फिर अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय का समापन उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य गुणों के वर्णन एवं इस घोषणा के साथ करते हैं कि मनुष्य नवदा भक्ति द्वारा भगवान की महिमा का गायन कर सकता है, जिसका शुभारंभ श्रवणम कीर्तनम से होता है। श्री वादरायणी उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्त्री के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने दानवों को मोह लिया और देवताओं को अमृत पिलाया। इन लीलाओं को सुनकर बैल पर सवारी करने वाले शिवजी उस स्थान पर गए जहां भगवान मधुसूदन रहते हैं। शिवजी अपनी पत्नी उमा को साथ लेकर तथा अपने साथी प्रेतों से घिरकर वहां श्री भगवान के स्त्री रूप को देखने गए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने शिवजी तथा उमा का अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया और ठीक प्रकार से बैठ जाने पर शिवजी ने श्री भगवान की विधिवत पूजा की तथा मुस्कराते हुए वे इस प्रकार बोले। श्री महादेव ने कहा कि हे देवताओं में प्रमुख देव, हे सर्वव्यापी भगवान, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपने अपनी शक्ति से स्वयं को इस सृष्टि में रूपांतरित कर दिया है। आप हर वस्तु के मूल एवं सक्षम कारण हैं। आप भौतिक नहीं हैं, निसंदेह आप हर एक के परमात्मा या सर्वोपरि जीवनी शक्ति हैं। अतः आप परमेश्वर हैं, अर्थात सभी नियंत्रकों के परम नियंत्रक हैं। देवदेव महादेव उवाच, हे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, जगत व्यापिन हे सर्वव्यापी श्री भगवान, जगत ईश हे ब्रह्मांड के स्वामी, जगत मय हे भगवान, जो तुरंत अपनी शक्ति से इस सृष्टि में बदल गए, सर्वेशाम अपि समस्त प्रकार की भावानाम स्थितियां त्वम आप आत्मा गतिमान शक्ति हेतु, इसका कारण ईश्वर श्री भगवान परमेश्वर। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु इस भौतिक जगत के भीतर सत्वगुण अवतार के रूप में निवास करते हैं, शिवजी तमोगुण अवतार हैं और ब्रह्मा जी रजोगुण अवतार हैं। यद्यपि विष्णु जी इन्हीं में से एक हैं, फिर भी वे उसी कोटि में के नहीं हैं। श्री भगवान विष्णु देवदेव हैं, अर्थात वे समस्त देवताओं के प्रमुख हैं। चूंकि शिवजी इस भौतिक जगत में हैं, अतएव भगवान श्री विष्णु की शक्ति में शिवजी सम्मिलित हैं। इसीलिए भगवान श्री विष्णु जगतव्यापी या सर्वव्यापी भगवान कहलाते हैं। शिवजी कभी कभी महेश्वर कहलाते हैं। अतएव लोग सोचते हैं कि शिवजी ही सब कुछ हैं, किंतु यहाँ पर शिवजी भगवान श्री विष्णु को जगदीश कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी। कभी कभी शिवजी विश्वेश्वर कहलाते हैं, किंतु यहाँ पर वे भगवान श्री विष्णु को जगन्मय कहकर संबोधित करते हैं, जिससे सूचित होता है कि विश्वेश्वर श्री भगवान श्री विष्णु के अधीन हैं। भगवान श्री विष्णु वैकुंठ लोक के स्वामी हैं, फिर भी वे भौतिक जगत को भी नियंत्रित करते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, मयाधिक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ब्रह्मा जी तथा शिवजी भी कभी कभी ईश्वर कहलाते हैं, किंतु परम ईश्वर तो भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण। परम भगवान तो श्री कृष्ण या श्री विष्णु हैं। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है, वे भगवान श्री विष्णु के ही कारण हैं, उचित क्रम में कार्यशील हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, यहाँ तक कि परमाणु भी अपने भीतर भगवान श्री विष्णु की उपस्थिति के कारण कार्यशील होते हैं। श्रील प्रभुपाद की। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरांध्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजन सहितं कृष्णचैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबराद अरुण बिंब फलाद रोष्टक पूर्णेन्दु सुंदर मुख दरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तजन, आशीर्वाद करें हमें कि इस विशाल सातत संहिता के विषय में बोलने का साहस जुटा पाए। बहुत बहुत महान आचार्यों का सानिध्य प्राप्त होता है तो इस विषय पर बोलना बहुत गंभीरता का विषय बन जाता है, तथापि आज्ञा का पालन करते हैं। तत्र देवासुरो नाम, देवासुर नाम का ये बहुत संग्राम हुआ क्षीर सागर के समुद्र के तट पर। रण परम दारुण, कैसा रण था? परम दारुण, रोदयंश तुमुल राजंश भय को उत्पन्न करने वाला था। तो ये युद्ध हुआ और ये आख्यान बहुत ही सुंदर आख्यान है। इस आख्यान के विषय में जितनी गहराई के साथ आप जाएंगे, इस आख्यान से आप रत्न निकाल करके ला पाएंगे। 14 रत्न तो इसमें से निकले ही हैं। वस्तुतः रत्नों की कमी नहीं है कि 14 रत्न निकलने के बाद इस समुद्र में रत्न कम पड़ गए या रत्न नहीं है। जिन खो जाते न पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डला रहा किनारे बैठ। जितनी गहराई के साथ आप अंदर चले जाएंगे उतने ही आप रत्नों को पाएंगे। और देवासुर संग्राम का यह विषय यदि किसी की समझ में पूरा आ गया तो इस संसार में वह देवासुर संग्राम को जीत ले गया, जीत जाएगा। बहुत गहराई के साथ में इस प्रसंग को, इस आख्यान को बड़े प्रेम के साथ सुना रहे हैं। कौन? सुखदेव राजा परीक्षित को इस आख्यान को सुनाने की जरूरत क्या थी? इस आख्यान को सुनाने से ही व्यक्ति मनुष्य इस संसार में देवासुर संग्राम को जीत पाएगा। उसकी एक कोटि अवश्य होगी, या तो देव कोटि का होगा या दानव कोटि का, असुर कोटि का होगा। तो असुरों के अपने नियम और सिद्धांत हैं, देवताओं के अपने और नियम सिद्धांत हैं। इन दोनों नियम और सिद्धांत से संसार चलता है, लेकिन सच्चाई तो यहां पर एक कदम और ऊपर है, एक पायदान और ऊपर है। वह पायदान कौन सा है? के भक्त न देव है न असुर है। भक्त देवताओं की कोटि में है, असुरों की कोटि में है, तो यहां तो और ऊंचाई है। तो समझने के लिए बहुत कुछ है, और जितने हम ऊंचाई पर जाएंगे, हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, उतनी ही गहराई के साथ हम देवासुर संग्राम को समझ पाएंगे। अरे योपि संदेहा सत्कार्यार्थ गौरवी, दुश्मन के साथ में भी संधि करनी चाहिए यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। देवता दैत्यों के पास गए, निशस्त्र होकर के गए, विनम्र होकर के गए, असुरों के पास गए देवता। उन्होंने प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव रखने के बाद में दैत्यों ने विचार किया कि इनके प्रस्ताव में कोई खोट तो नहीं है, एक कलुषित मन से कोई ऐसी योजना तो नहीं लाए जो मुझको छल रहे हो। उन्होंने कहा, हम देवासुर संग्राम क्यों इसमें जाएं, हम आपस में क्यों लड़ें, हम तो भाई भाई हैं। अरे मौसी मौसी के भाई भाई होते, लड़ने से क्या फायदा? आप भी जीवन यापन करिए, हम भी करें, हम भी सुखी रहें, आप भी सुखी रहें, और हम दोनों बैर बना करके हम भी दुखी और आप भी दुखी, तो हम ऐसा रास्ता निकाल लें कि आप भी मस्त रहो, हम भी मस्त रहें, काहे के लिए हम आपस में झगड़ा करते हैं, अमृत पिएंगे दोनों जने और दोनों ठीक ठाक रहेंगे, अमृत मिलेगा, ऐसा विचार करके दैत्य इस कार्य में संलग्न हुए। पहला विचार यह है कि देवता विनम्र होकर के गए हैं, पहला विचार रखिए, देवता विनम्र होकर के गए किनके पास? असुरों के पास। असुर विनम्र होकर के नहीं आता, असुर की एक अपनी स्थिति है, असुर की एक अपनी सीमा है, असुर के अपने विचार हैं, और असुरों का विचार एक विचार बहुत सुंदर है। उस विचार को यदि आपने समझ लिया तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। देवता जो है ना, युद्ध किया, सब कुछ किया, सारा परिप्रेक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है, इसीलिए मैं कुछ ही बिंदुओं को ग्रहण करूंगा। देवताओं ने युद्ध किया, अमृत पान किया और दैत्यों के हृदय में जो लगती है ना वो कभी छूटती नहीं है और देवता उसको भुला देते हैं। देवता क्या करते हैं? भुला देते हैं। एक बार माफी मांग ले बस भूल गए, आगे पीछे क्या है। माफी मांगने के बाद में दोबारा कोई व्यक्ति षड्यंत्र करके उसका अहित करना चाहे तो देवता उसको स्वतंत्र करते हैं, तुम अहित करो हमारा, क्योंकि हमने तो माफ कर दिया और उसने माफी इसलिए मांगी है कि उसे आपको बहुत घातक अवस्था तक पहुंचाना है। रण हुआ, बलि महाराज परास्त हुए, जीवन के अंतिम अवस्था तक पहुंच गए, विजय प्राप्त हो गई, देवताओं को अमृत पान कर लिया है, शक्ति का वर्धन हो चुका है, देवासुर संग्राम समाप्त हो गया है। भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हुए, असुरों को मोहित कर दिया, अमृत देवताओं को पिलाया, असुरों को वंचित कर दिया। किसने किया? भगवान ने किया। और किस प्रकार मोहित हुए हैं ये असुर उसको आप सुन चुके हैं। अनकंडीशनल आप जो कुछ करना चाहती हो आप करिए, मैंने तो अपना सर आपके हाथ में रख दिया है, आप मुझे न्याय से दीजिए, अन्याय से दीजिए, मैं आप पर पूरा विश्वास कर रहा हूं। और मोहिनी कह रही है कि मुझ पर विश्वास करते हो, मैं पुक्षली हूं, पुरुषा पुरुषा चलता, हर एक व्यक्ति के पास में मेरा आना जाना रहता है, तुम मुझ पर विश्वास कैसे कर रही हो? अरे ये तो अपनी सत्य बात को प्रस्तुत कर रही है, इसका अर्थ बनता है कि हृदय शुद्ध है, ऐसा विचार करते हैं। ध्यान रखिए, देवता और असुर, देवता बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं, असुर बहुत नीचे तक रहते हैं, लेकिन ऊंचाई तक पहुंच करके देवता भी ऊंचाई को पार करके परम ऊंचाई तक नहीं जा पाते, ये देवताओं की स्थिति है। असुर मोहित होते हैं, जब मोहिनी रूप धारण किया भगवान ने तो असुर मोहित हो गए, ऐसे असुर मोहित हुए कि वो कामांध हो चुके थे स्त्री के रूप पर। इस सुंदर भाव को व्यक्त किया है कपिल भगवान ने, माता देवउती के सामने प्रस्तुत किया है। बलम मे पश्य मायायाम स्त्री मैया जयनो दिशाम या करोति पदाक्रांतां भ्रू विज्रमेण केवलम। हे माता मेरी शक्ति को तो देखो, बलम मे पश्य मायायाम स्त्री मैया जयनो दिशाम, मेरी स्त्री रूपी माया को तो देखो, या करोति पदाक्रांतां, बड़े बड़े वीरों को जमीन पर डाल देती है, चरणों में झुका देती है, मात्र कितना करती है, कौन से अस्त्र का प्रयोग करती है कि बड़े बड़े वीर धुरंधर जो आकाश में तहलका मचा रहे हैं, जो पृथ्वी पर तहलका मचा रहे हैं, जो जल में तहलका मचा रहे हैं, वो स्त्री के चरणों में जाकर के गिड़गड़ा रहे हैं। भू विज्रमेण केवलम, केवल आंख को मटका देने से, आंख को मटका देने से आगे बैठे हुए और मेरी तरफ देखा, मुझको चाहा, इस प्रकार मोहित हो जाते हैं। भू विज्रमेण केवलम, यह स्त्री का स्वरूप, स्त्री की प्रधानता माया शक्ति के द्वारा है और पुरुष की प्रधानता पुरुष शक्ति के द्वारा है, भोग शक्ति के द्वारा है। ध्यान इस बात का रखना, बहुत गहराई के साथ समझना है, न तो स्त्री स्त्री है न पुरुष पुरुष है, मिथ्या भाव पुरुष का धारण इधर किया है, उधर स्त्री भी पुरुष है और पुरुष भी पुरुष है। स्त्री में मायक गुण ज्यादा होने के कारण वो स्त्री मायक बनी हुई है और पुरुष जो है ना उसमें भोक्ता का गुण है। भूमि है, भूमि में भूमि का भाव जो है वो स्त्री है और किसान और रोपण करने का, बीज रोपण करने का भाव जो है वो पुरुष का है। दोनों ही वस्तु भगवत सापेक्ष हैं। जब स्थिति को स्वरूप को समझ में आता है, आत्मचिंतन होता है, आत्मज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है, आत्म अन्वेषण होता है, आत्मा राम होता है, वस्तु समझ में आती है, उस समय क्लियर हो जाता है कि आत्मा न तो स्त्री है ना पुरुष है।
आत्मा विचित्र है, आत्मा की विचित्रता को जो समझ गया इस संसार में उसका भव बंधन शोक मोह सारी वस्तुएं तुरंत गिर जाती हैं। देवासुर संग्राम इसमें सामाजिक स्थिति का तो पता पूरा चलता है कि हमें किस तरह क्या और कैसे समझना चाहिए, इस स्थिति तक तो देवासुर संग्राम आता है, लेकिन देवासुर संग्राम का संबंध परम सत्य के साथ में नहीं है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक देवासुर संग्राम चलेगा, देवासुर संग्राम चलेगा, देवासुर संग्राम शाश्वत है। क्यों शाश्वत है देवासुर संग्राम? इसीलिए शाश्वत है कि सृष्टि की रचना प्रकृति के गुणों से होती है। किससे होती है? प्रकृति के गुणों से होती है। और प्रकृति के गुण तीन होते हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। तामसिक गुणों का आश्रय लेकर के दैत्य असुर होंगे, राजसिक गुणों का आश्रय लेकर के मनुष्य यक्ष राक्षस होते हैं जो भोग की प्रवृत्ति प्राप्त करते हैं और देवत्व को धारण करके शांति को प्राप्त करते हैं, हैं? और सुख शांति की अवस्था को धारण करते हैं, लेकिन सुख शांति की अवस्था भी स्थाई, भोग की अवस्था भी स्थाई, बैर की अवस्था भी स्थाई, और ये तब तक नहीं गिरेगी जब तक आप आत्मज्ञान को धारण नहीं करेंगे। और ध्यान इस बात का रखिए, तत्व दर्शन में, ज्ञान के मार्ग में, आत्मचिंतन में, सांख्य योग में, वस्तु समझ में आ जाएगी, जीव की रचना में, जीव की स्थिति में मूल कारण क्या है? मूल कारण आत्मा का है। आत्मा करती कुछ नहीं है, लेकिन आत्मा के बगैर होता आत्मा करती कुछ नहीं है, आत्मा का बंधन नहीं है, आत्मा का मोक्ष नहीं है, लेकिन आत्मा के बगैर होता भी कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ी स्थिति है, यहां बताना चाहिए कि भक्तों के बीच में बैठ करके इसकी चर्चा ना होगी तो कहां होगी, ध्यान इस बात का रखना। हंस रूप में भगवान आते हैं ब्रह्मा जी और चतुष्कुमारों के बीच में संवाद होता है, उस संवाद में एक ऐसी बात आती है और उसका उत्तर ब्रह्मा जी नहीं दे पाते। चतुष्कुमार प्रकट होने के बाद ही पिता बोलते हैं सृष्टि की रचना करो, तुरंत ही पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, हमें विपत्ति में नहीं फंसना, और चले जाते हैं। वही जाकर के ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि पिताजी आप मुझे ये तो बताओ, संसार चेतना में है कि चेतना संसार में है? चित्त में गुण है या गुणों में चित्त है? सूक्ष्म्याम योगस्य, योग की सूक्ष्म अवस्था का नाम है ये, योग की सूक्ष्म अवस्था का नाम है कि चित्त में गुण है या गुणों में चित्त है। और जब ये गुल्थी सुलझा लोगे आप, समझ में आ जाएगा, उसी समय अविद्या धराशायी होगी, अविद्या धराशायी होगी। बहुत ही ये बात भी बहुत ही शांति प्रिय अवस्था में बैठ करके कई कई दिनों तक बोल करके विचार करके, दो शब्द समझाए आ जाए समझ में तो आ जाए, बहुत दिनों तक बैठ करके, बहुत दिनों तक चर्चा करके, बात दो शब्दों की है लेकिन प्रवेश कर पाए इसकी संभावना बहुत कम है। आत्मा का कोई बंधन नहीं है, आत्मा का कोई मोक्ष नहीं है, लेकिन आत्मा अविद्या के वश्य हो जाता है। आत्मा क्या होता है? अविद्या के वश्य हो जाता है, और आत्मा अविद्या से मुक्त होने के योग्य है। कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? कैसे मुक्त होगा? इस बात को समझना ही ये जीव तत्व का, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का अस्तित्व नष्ट यही होता है। वैसे इस विषय को यहां ये गंभीर विषय आ गया, मैं दो शब्द बोल करके आगे बढ़ता हूं। ध्यान इस बात का रखना, आत्मा भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, ये सारे के सारे लक्षण हैं विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, सच्चिदानंद का ही लक्षण है विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय सच्चिदानंद का स्वरूप है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद है। रूपाय, उनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूप है। स्वराद है भगवान। भगवान कैसे हैं? जन्मादर्श यतोन्वयाद इतरत चार्थेषु विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंति यत शूरया तेजो बारिमृदाम यथा विनमयो यत त्रिशर्गोमृषा धामनाम स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। मैं उनका ध्यान करता हूं जो कुहक से दूर हैं, वो अपने धाम में विराजमान रहते हैं, वो कोई इतने व्यथित नहीं है, हाय मुझको ये करना है, मुझको रचना करनी है, मुझको ये करना है, मुझको वो करना है, उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें तो खाली बंसी बजानी है, मस्त हैं वो। यहां पर बहुत सारी बातें आती हैं, कृष्ण अथवा विष्णु, भगवान पुरुषोत्तम, कृष्ण अथवा विष्णु, ये बातें इसलिए हैं कि इसको सिस्टमेटिक समझा नहीं गया है। कृष्ण ही विष्णु है और विष्णु ही कृष्ण है, इस बात को लेकर के आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कृष्ण किस प्रकार विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, इतनी नॉलेज पूरी बीच में आएगी। वृंदावन में गोलोक में विराजमान कृष्ण कुछ नहीं करते, वंशी बजाते हैं, अपने स्वांस बलराम के द्वारा महाशंकर्षण शंकर्षण कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्वोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और विष्णु क्षीरोदक्षाई जीवों के सापेक्ष। क्षीरोदक्षाई विष्णु किसके सापेक्ष हैं? जीवों के सापेक्ष। किसका भरण पोषण करते हैं? जीवों का भरण पोषण करते हैं। क्यों भरण पोषण करते हैं? भगवान अपना मानते हैं इसलिए, लेकिन वो जीव तो भगवान को अपना नहीं मानता है। बेटा छूट गया बाप से, वो कहता है बाप मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, बाप मेरे मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। बाप जानता है कि बहका हुआ बेटा है, मैं इसका पिता हूं, मुझे वो तो नालायक है सो है, लेकिन उसके खाने पीने का इंतजाम करो, अरे जाओ एक फ्लैट उसको दिला दो, अरे कुछ ना कुछ तो पहुंचा दो, वो तो हमें नहीं मानता लेकिन है तो मेरा, ऐसा भाव पिता का है। जीव जब अविद्या के चक्र में आता है तो स्वयं ही भोक्ता बन बैठता है। जीव जब अविद्या के चक्र में आता है स्वयं ही भोक्ता बन बैठता। कैसे भोक्ता बन बैठ गया वो? इसलिए बन बैठ गया कि जीव भगवान का आंशिक अंश है। क्या है? अंश है। भगवान के सारे गुण उसके अंदर है। भगवान स्वराट है, भगवान के सच्चिदानंद रूप है और जीव की भी स्वरूप शक्ति है। जीव की भी स्वरूप शक्ति है। उस स्वरूप शक्ति का नाम क्या दोगे? उस स्वरूप शक्ति का नाम क्या दोगे? और उस स्वरूप शक्ति का नाम है शुद्ध सत्व। क्या है? शुद्ध सत्व। सत्व पूरे चराचर जगत में जो भी अभिव्यक्ति हो रही है वह क्या है? सत्व। उस सत्व में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के फूल खिलते हैं, लेकिन जीव का स्वरूप क्या है? शुद्ध सत्व। और वह शुद्ध सत्व गुणों की प्रेरणा से धुआं छा जाता है, उसमें प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद में आकर्षित कर लेता है, और आकर्षित करने के बाद में प्रकृति का जो अहंकार तत्व है, प्रकृति कितने प्रकार की है? कितने प्रकार की? अष्टधा, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकाराम यति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अंतःकरण कितने प्रकार का है? अंतःकरण में कितनी वस्तु है? चार, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन बुद्धि अहंकार तो प्रकृति में था ही, चित्त कहां से आया? अंतःकरण में चार है, अंत चतुष्ट है, चार है। यह अंतःकरण के अंतर्गत चित्त है, ये चित्त भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है और इस चित्त के द्वारा ही जीव भ्रमित हो जाता है। बताया था मैंने एक बार पहले भगवान की तीन प्रकार की शक्ति, संदिनी शक्ति, संवित शक्ति, आलादनी शक्ति, आलादनी शक्ति और संदनी शक्ति, सनातन शक्ति। सत्व शक्ति तो है ही है, लेकिन सबसे बढ़िया कार्य करने वाली जो शक्ति है ना, जो आगे फैलती है, वह संबित शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। और वही ज्ञान शक्ति चित्त शक्ति जब शुद्ध जीव पर प्रकट होती है तो चित्त शक्ति, और जब कामी के ऊपर संसारी पर प्रकट होती हो तो चित्त बनता है। क्या बनता है? चित्त बनता है। इसीलिए हम कैसे अपनी अवस्था को प्राप्त करें, उसका नाम है चित्त शुद्धि। क्या? चित्त की शुद्धि करो। क्या करें? चित्त की शुद्धि करो। चित्त की शुद्धि होगी कैसे? अरे चित्त की शुद्धि कर ही नहीं सकते, चित्त में तो अविद्या फंसी पड़ी है। अविद्या, अस्मिता, राग, मोह, अभिनिवेश फंसा पड़ा है। तो चित्त की शुद्धि करना ही सबसे बड़ी वस्तु है। देवासुर संग्राम की स्थिति यही है कि संसार में देवासुर संग्राम निरंतर चलता रहेगा। आज भी देवासुर संग्राम ही चल रहा है। आज भी देवासुर संग्राम चलता रहा है, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कभी सतोगुण की अभिव्यक्ति ज्यादा बढ़ जाएगी तो सात्विक वृत्तियां आ जाएंगी, रजोगुण की अभिव्यक्ति बढ़ जाएगी तो पूरे संसार में तो ये हमने इस देश ने उन्नति कर ली, उस देश ने उन्नति कर ली, उस देश ने उन्नति, तमोगुण की वृत्ति आएगी, विनाश लीला हो जाएगी, लीलाएं चलती रहेंगी। भगवान शंकर क्या करते हैं यहां पर? आए और आकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके भगवान के पास, हां मैंने सुना था आपने मोहिनी रूप धारण किया। हां मोहिनी रूप? तो फिर आपको क्या मतलब है मोहिनी रूप से? प्रभु ऐसे मत कहिए, जब जब आपने अवतार धारण किए हैं तब तब मैंने उन सब का दर्शन किया है, उनका दर्शन किया है, और आपने इस मोहिनी अवतार धारण कर लिया, मोहिनी स्वरूप प्रकट कर लिया और मुझे पता नहीं चलने दिया। समुद्र मंथन के समय जब जहर निकला, हलाहल विष निकला, शंकर जी के पास भेज दो, आपने भिजवा दिया, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। जब आप मोहिनी रूप धारण करते हैं तो कहते हैं उससे क्या जरूरत है, ऐसे प्रभु नहीं हो सकता, प्रभु मुझे दिखाइए, मुझे जरूर दिखाइए। और ऐसे आकर के जब उन्होंने वंदनाएं की हैं, आकर के शंकर जी ने क्या सुंदर वंदनाएं की हैं, उन वंदनाओं के अंतर्गत पहला ये श्लोक है और सुंदर वंदना है इसकी। देव देव जगत व्यापिन, देव देव देवताओं के देव, जगत में समाये हुए, जगत के ईश, जगत में स्वारा, जगत ही आप ही हैं। सर्वेशामे भावानाम, समस्त प्रकार के भावनाओं के उद्गम स्रोत आप हैं। तमात्मा जगदीश्वरा, इस संसार की आप आत्मा हैं। बहुत बढ़िया वर्णन किया, सुंदर स्तुति करने के बाद में भगवान बोलते हैं आप चाहते क्या हो? प्रभु मुझे वह स्वरूप दिखाइए। हे शंकर जी आप क्या बात करते हो, वो तो कामियों को असुरों को मोहित करने के लिए प्रकट किया था, वो आपके लिए थोड़े ही है। प्रभु नहीं, ऐसी बात नहीं, प्रभु जरूर दिखाइए। तो आगे के श्लोकों में क्षणिकाएं आती हैं, उसमें हम बता रहे हैं थोड़ा सा, और उसके बाद में भगवान तो मुस्कुराते हुए बोले नहीं प्रभु दिखाइए, नहीं प्रभु दिखाइए, नहीं प्रभु दिखाइए। उद्यान में बैठे हुए हैं, साथ में उमा जी को लेके गए हैं, पार्वती जी को साथ में लेके गए हैं। दिखाना क्या चाहिए, वो स्वरूप दिखाइए। और जिसकी अधिष्ठात्री देवी पार्वती है उनको साथ लेकर के गए, शिला पर बैठे हुए हैं। भगवान तो ऐसे विनोदी हैं, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताए भजन तज भाव नाना। जिसने भगवान के स्वभाव को समझ लिया भजन के अलावा कुछ करेगा ही नहीं। प्रभु दिखाइए दिखाइए, भगवान मुस्कुराते हुए बोले अरे आप नहीं, शंकर जी आपके लिए नहीं, नहीं प्रभु ऐसे मत करिए, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। भगवान मुस्कुराते हुए कक्ष से बाहर निकल गए, मुस्कुराते हुए कक्ष से बाहर निकल गए। सामने देखते हैं सुंदर उद्यान है, सरोवर है, कमल के पुष्प खिले हुए हैं, हंस तोता कार्णव उसमें विहार कर रहे हैं, और उसी के बीच में से एक लता के बीच में से एक सुंदर कामिनी युवती प्रकट होकर के आ रही है। हाथ में कंदुक लिए हुए है और बॉल को फेंकती हुई चली आ रही है। जब जमीन पर गिरती है बॉल उछलती है, उछाल करके ऊपर फेंकती है, बॉल नीचे आती है, और आने के बाद में जैसे बॉल को पकड़ने का प्रयत्न करती है उसके अंग वस्त्र ढीले पड़ते हैं और अंग प्रत्यंग का चमक दिखाती है। और शंकर जी देखते रह गए, अबाक देख रहे हैं, और देखते देखते पार्वती कह रही क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? और शंकर जी ने पार्वती की तरफ कुछ नहीं देखा और देखते ही रह गए, देखते ही रहते। ऐसी बॉल उछली कि बॉल एकदम निकट आ गई, और निकट आने के बाद में शंकर जी खड़े हुए और यूं देखते रहे और जाकर के सीधे भाग करके उस युवती को आलिंगन कर लिया और उसको भींच रहे हैं। पार्वती कह रही है तुम कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? और शंकर जी कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका अंग मर्दन कर रहे हैं। और अंग मर्दन करते समय क्या देखते हैं कि अब उनके अंग में जो पाश में कोई वस्तु नहीं है, और वस्तु नहीं है जिसका मैं मर्दन कर रहा था, जिसका मर्दन कर रहा था वो सामने खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते हुए अरे प्रभु आप, प्रभु आओ, पार्वती जी बोली कटवाली नाक, दैवी ही शाम गुणमयी मम माया दुरत्तया, कोई पार नहीं कर सकता, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। इसलिए देख करके शंकर जी लज्जित हुए, और लज्जित होकर के मन कर रहा है कि पृथ्वी फट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं, मैं कैसे पार्वती को मुंह दिखाऊं, कैसे इनको मुंह दिखाऊं। और देखते हुए भगवान मुस्कुराते हुए बोले, शंकर जी आप चिंता क्यों कर रहे हैं, ये मेरी माया है, कामारी, काम को नष्ट करने वाले, काम को विध्वंस करने वाले, वह शंकर जी आप काम से मोहित हो गए। क्यों नहीं होंगे, होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। जब भगवान अपनी माया को फेंक रहे हो तो उसके फंदे में अगर हम ना फंसे तो कौन फंसेगा, हमें तो फंसना ही चाहिए। लेकिन जब भगवान के फंदे में फंसे हो तो भगवान ही निकालते हैं, बोलते हैं शंकर जी चिंता मत करो, तुम्हें कभी काम व्याप्त नहीं होगा, तुम काम में नहीं हो। भगवान शंकर की स्थिति हमेशा नामनिष्ठ है, नाम में डूबे हुए हैं। जहां भी जाते हैं आप पाएंगे शंकर जी वहां पर विराजमान होंगे, गोपेश्वर, चकलेश्वर, आसेश्वर होंगे विराजमान, रह नहीं सकते। और जिस समय शंकर जी के साथ में भगवान नहीं होंगे वहां पाखंड जरूर होगा, वहां आत्म अन्वेषण हो रहा होगा, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम 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 करते करते बाबा सोहम बोल रहे हैं, बाबा बाबा नाश्ता कर लिया, हाँ नाश्ता तो कर लिया, बाबा बाबा अभी मैं सुंदर पकौड़ी लाया हूं दही के साथ में, पकौड़ी तो मेरी फेवरेट है, पकौड़ी खिलाओ। और पकौड़ी खिलाने के बाद में सोहम 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 करोगे, लेकिन सोहम को समझ नहीं पाओगे। और जहां पर भगवान होंगे वहां पर भगवान को भोग लगेगा, किसको लगेगा, भगवान को भोग लगे करके फिर हम कहेंगे खीर प्रसाद तो आज इतना आनंद था, इतना आनंद था, ऐसी खीर प्रसाद मैंने आज तक भी खाया ही नहीं, और कह करके दिल को शांति होगी। अरे खीर ऐसी बनाना जो मुझे बहुत बढ़िया लगे, काम ही हो, अपनी कामनाओं को तुष्ट करने के लिए आप पका रहे हो। तो शंकर जी महान वैष्णव हैं, निम्न गा नाम यथा गंगा, वैष्णवा नाम देवा नाम अक्षतो तथा, वैष्णवा नाम यथा संभो पुराणा नाम इदम तथा। तो महान वैष्णव है शंकर जी, और शंकर जी इस प्रकार भगवान के द्वारा भगवान की माया का दर्शन करके गदगद होकर के आ रहे हैं, होना चाहिए। इस प्रकार माया का दर्शन मार्कंडेय ऋषि ने भी किया। जहां भी आप देख रहे हो माया के द्वारा रचित संसार है, और माया के बीच में जितने भी रूल और रेगुलेशन लगाए गए हैं वह सारे के सारे संसार में जन्म मृत्यु के चक्र के लिए ही लगाए गए हैं। इनको ध्वंस कर दो, हटा दो संसार के सारे, ये ना लौकिक व्यवहार और वैदिक व्यवहार की वहां तक स्थिति नहीं है जहां पर भागवत धर्म चालू होता है। भागवत धर्म को स्वीकार करके आप निरंतर इसी जीवन में अपने इसी शरीर में चिन्मय देह को प्राप्त करके भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के भगवान शंकर का जो आनंद है, भगवान की माया का जो स्वरूप है, शाश्वत है, अक्षुण्ड है, उनके बीच में हम कहां हैं ये खोजना है। खोजना क्या है, हमारी स्थिति क्या हो रही है, हमारी स्थिति ये हो रही है कि इस देवासुर संग्राम को हम जीत नहीं पाएंगे। देवताओं ने जीता, बलि महाराज बिल्कुल परास्त कर दिए गए, मरणासन्न हो गए, उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनको संजीवित किया, और संजीवित करके उनको सिद्धांत दिया अर्थशास्त्र का, और उन अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से कुछ ही समय के बीच में यज्ञ करके और सामाजिक व्यवस्था का निरूपण बढ़िया तरीके के साथ में करके उन देवताओं के सामने फिर खड़े हो गए, और फिर विजय को प्राप्त कर लिया असुरों ने। असुरों की लगन इतनी तीव्र है, हमें सीखना है असुरों से, असुरों की लगन को सीखना है। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो परम ब्रजेत उन भगवान का समर्पण करके भगवान का सानिध्य प्राप्त करें हम। और इस प्रकार से हम इसी जीवन में इसी शरीर को दिव्य बना सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी ने ये जो रत्न दिया है हमको, पूरे विश्व में वितरण हो रहा है, इसका पूरा सम्मान हो। आपके हाथ में बहुत सुंदर रत्न है, ऐसा रत्न कहीं नहीं है आपको, लेकिन ध्यान इस बात का रखो, इस रत्न को परोसते समय सावधानी बहुत रखो। समाज में ऐसा कोई विप्लव पैदा मत करो, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो जिससे साधु समाज व्यथित हो जाए। हमें सामाजिक अवस्था को लेकर के चलना है। हम अकेले, हमारे पास में कोई वस्तु है, दूसरा व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे पास कोई वस्तु है, हमारा क्या है। हमें सामाजिक समरसता को भी धारण करना है, सभी संतों को, गुरु को, साधु को, शास्त्र को, सभी की भावनाओं को धारण करना है। हम कोई एकांकी शब्द ऐसा ना बोलें ताकि उस पर कोई कटाक्ष करे। हमारे पास वो अमृत है, वो दिल भरा हुआ है कि हमें सब कुछ भगवान, हम तो कुछ नहीं कर पाए लेकिन शिला प्रभुपाद की कृपा मुझ पर ऐसी बरसी कि मेरे जीवन में कोई संशय और डाउट नहीं है। मेरे कर्तव्य में कमी है लेकिन गुरु की कृपा में, साधु की कृपा में, संत की कृपा में, भगवत कृपा में कोई कमी नहीं है। जब कमी पाई जाती है तो मेरी कमी पाई जाती है। अपनी कमी को हम भरें, अपनी कमी को भरें, संतों का सम्मान करें और हम धीरे धीरे उस संत के स्वभाव को धारण करें और ऊपर की जो काई है उस पर ध्यान मत दो। ऊपर की जो स्थितियां हैं वो तुम्हारी स्थायी नहीं है। तुमने जिसके लिए जीवन समर्पण किया है उस अवस्था को देखो। मैंने जीवन किसके लिए, इनके साथ राग और द्वेष लगाने के लिए किया था कि मैंने जीवन को समर्पण किया इनकी बातों में आने के लिए किया था। ये क्या कर रहे हैं, करते रहेंगे, उनका अपना काम है, मुझे क्या करना है। ऐसे एकांकी रूप से आगे बढ़िए, कर्म बनता जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से सूचना जब प्राप्त होती है कि विश्व में बहुत आनंद उठ रहा है, दिल भरता है कि पृथ्वी ते याचेद नगरादि ग्राम सर्वत्र संचार है वेक मोर नाम, दिल गदगद गद होता है। हरे कृष्णा, इन्हीं वाणी के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय।